Hare Krishna, Srimad Bhagavatam Mahapuran, Lecture 11. Param saubhagya hai ki hame isi jeevan mein Chaitanya Mahaprabhu ki leelaon ka aswadan karne ka avsar prapt ho raha hai Srimad Bhagavatam ke madhyam se. Hamne padha ki Chaitanya Mahaprabhu Godavari nadi ke tat par Rai Ramanand se mile. Rai Ramanand ko dekhte hi Chaitanya Mahaprabhu ne kaha कि मैं आपसे मिलने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि रामानंद विशाखा सखी का अवतार थे और अपने इस स्वरूप में वो बहुत ही बुद्धिमान थी थे रामानंद. और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बहुत सारे विषयों पर डिस्कस की, जिसमें पहले उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, फिर बोला वर्णाश्रम धर्म से ऊपर कुछ बताओ चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा. तो फिर उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर भक्ति स्वीकार करनी चाहिए. चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी नहीं माना और उसके बाद राय रामानंद से पूछा उसके आगे बताओ, तो उन्होंने कहा कि भौतिक धारणा से आध्यात्मिक अनुभूति जीव की सर्वोच्च उपलब्धि है. महाप्रभु ने इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया, टुकरा दिया, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्ति बहुत सा बखेरा खड़ा करते हैं. और ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते गए और फिर राय रामानंद ने कहा कि वास्तव में अपने जीवन को यदि आपको शुद्ध बनाना, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो सबसे महान कार्य क्या है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, वैष्णव भक्तों से, शुद्ध वैष्णवों से कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए. यहीं से हमारी आध्यात्मिक जीवन का उदय होता है, स्टार्ट होता है. तो चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद की इस बात को स्वीकार किया. चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद की डिस्कस यहीं पर समाप्त नहीं हुई थी, आगे हम इससे आगे आज पढ़ेंगे. उससे पहले इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम इस दिव्य ज्ञान जिसको न हम पढ़ने के योग्य है न श्रवण करने के योग्य है, ग्रहण करने का तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन यदि किसी के ऊपर गुरु और गौरांग की कृपा हो जाए फिर कुछ भी संभव है. तो हम गुरु गौरांग से कृपा की याचना करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच में अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि रामानंद राय के साथ हुई उन वार्ताओं को सुनने के लिए पहले स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने अन्य पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में शिला रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरे जो टॉपिक से बात हुई ना, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद शुद्ध भक्तों के संग के बाद जब शुद्ध भक्तों की श्रृंखला आगे बढ़ते 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 गोपियों और फिर शिव जी तक वार्ता चली थी, श्रीमती राधा रानी और माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा, सब ये सारी चीजें जब उन्होंने आपस में ये वार्ताएं हुई थी, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते क्योंकि हम इनको सुनने के योग्य नहीं है अभी, क्योंकि हम भौतिक धरातल पर हैं और ये सारी वार्ताएं आध्यात्मिक धरातल पर हैं, तो हमें उनको सुनने के लिए पहले योग्य बनना पड़ेगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत नाम की एक दूसरे ग्रंथ में ये सब बातें लिखी हुई हैं। जब हम महापुराण पढ़ लेंगे, उसके बाद चैतन्य चरितामृत अगर हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ ना जीवन में, तो ये सारी चीजें जो आज हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं वो सब बहुत ही विस्तृत रूप से हम पढ़ सकेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस वेद के अंत में भगवान ने श्री राय रामानंद को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पूरी आ जाएं, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंध का आस्वादन कर सके। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने के जो राय रामानंद थे वो प्रताप रुद्र के यहाँ बहुत ही बड़ी पोस्ट पर थे, बहुत ज्यादा उनको मंथली सैलरी इतनी ज्यादा मिलती थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला आप ऐसा करो ये नौकरी छोड़ दो और आज वहां पर पुरी में हम दोनों मिलकर दिव्य संबंध का आस्वादन करेंगे। फिर हम क्योंकि मैं कब से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस तरह की बातें मेरे साथ करे, और आप मुझे मिल गए हो, अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों, तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्योंकि नियत कर्म तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये क्यों कहा कि अपना काम वाम छोड़ दो और भक्ति करना शुरू कर दो, जबकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आपको अपने नियत कर्म करने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए। वास्तव में भक्तों ये सारा जो भौतिक झमेला है ना, उसकी एक लिमिट होती है। जब हम भक्ति में बहुत 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 आगे चले जाते हैं ना, फिर एक समय ऐसा आता है कि ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, फिर हमें कुछ भी नहीं करना होता है, भौतिक धरातल पर हमें नहीं रहना होता है। कि वास्तव में ये भौतिक नियत कर्म जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि चलते 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 हम आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचे, क्योंकि अभी डायरेक्ट से अगर हम छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाएंगे ना तो हमारी आसक्ति उसमें लगी रहेगी, फिर क्या हम भक्ति कर रहे होंगे, फिर भी हमारे मन में वही भौतिक चिंतन चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते 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 आराम आराम से क्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो अंततः ये सारी चीजें छोड़नी है, क्योंकि जब तक छोड़ नहीं देंगे तब तक मोह नहीं खत्म होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें यह आदेश दिया था। लेकिन ये अवस्था अब भी हमारी नहीं है, अभी हमको ये सब ग्रस्त में रहकर या वानप्रस्थ संन्यास जिसमें भी हम हैं, ब्रह्मचर्य या फिर उस आश्रम में रहकर हमें भक्ति करनी है। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ ज्वाइन करो, लेकिन रघुनाथ दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं आपको वापस जाना। हालांकि वो इतना रोजाना गा करते थे, भाग के आ जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास के मुझे अपने श्री चरणों में रखो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो कितनी दफा भेज दिया, इवन शादी भी बोला जाके शादी कर लो। लेकिन अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक समय आता है जिसमें हमें सब कुछ परित्याग करना पड़ता है। और राय रामानंद और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इनका तो आने का मकसद ही ये था, ये सब तो आए ही चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहायता करने के लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु से जैसे ही मिले तो अपने फिजूल काम जो कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमें ये सारी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं उन सारी ड्यूटीज में रहते हुए भगवान की सेवा करनी, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण कथा को श्रवण करना और कृष्ण कथा को बांटना। इसलिए अपने जीवन के सारे जो हमारे ड्यूटीज हैं उनको छोड़ने की तो जरूरत नहीं है, हम अपने नियत कर्म करते हुए भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, नियमों को फॉलो कर सकते हैं, हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हाईएस्ट व्यक्ति होते हैं ना उनको दूसरों को सिखाने के लिए बहुत परित्याग करना पड़ता है, जैसे गुरु महाराज होते हैं उन्हें संन्यास लेना पड़ता है या फिर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सेफ हैं क्योंकि हम आश्रय में, जो बड़े होते हैं ना, बड़े पद पर आसीन होते हैं उन्हें बहुत बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत बहुत कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो छोटे होते हैं जो उनके अंडर में रहकर आश्रय में रहकर कार्य करते हैं उनके लिए आसान है, वो तो जैसे उनके शिक्षा गुरु उनके साधु और शास्त्र जैसे उनको आदेश देते हैं उनके हिसाब से उनको कार्य करना पड़ता है। इसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी से मुक्त हो गए और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली तो वे पूरी स्थिति अपने निवास स्थान पर लौट आए जहाँ पर वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्त बन गए। फिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पेंशन लेकर पुरी में एक छोटा मकान था उनका, वहां पर आके भगवान के साथ रहने लगे। पुरी में एक अन्य महाशय भी थे जिनका नाम शिखी महत्ति था, वे भी रामानंद राय की ही भांति अत्यंत ही विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुह्य बातें करते थे और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष बिता दिए। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि चार घनिष्ठ संभक्त थे जिनमें नारायणानंद, शिखी महेती, स्वरूप दामोदर और गोविंद नाम से उनका एक सेवक थे। तो ये सब क्या करते थे, इनके साथ बैठ के चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक विषयों पर डिस्कस करते थे और दामोदर गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर सिंह वो इन सबको लिखते थे। महाप्रभु ने भारत के सारे दक्षिणी भाग की विस्तृत यात्रा की। अब पूरी में जिसने एयर्स है ना चैतन्य महाप्रभु, उन 24 सालों में से 6 साल तक उन्होंने दक्षिणी भारत की यात्रा की थी। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को महाप्रभु ने ही दीक्षा दी थी। इतना सौभाग्य होगा तुकाराम जी का कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से दीक्षा ली थी। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से अप्लावात कर दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में चालू है। और इन्होंने बहुत संकीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद, और आज तक उनके जो संकीर्तन आंदोलन है वो चल रहा है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ खोज निकाले, ये है ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण करणामृत। बहुत ही सुंदर ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं ना, जो सुबह को मंगल आरती के टाइम पर भी उसकी दो कड़ियां पढ़ते हैं, गोविंदम आपुरुषम तमहम भजामि। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा के दौरान ब्रह्म संहिता को खोजा और कृष्ण करणामृत जो कि बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा लिखी हुई थी उनको ढूंढा। ये आगे बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद पुनः पूरी लौट आए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का उल्लेख श्री प्रभुपाद ने समाप्त किया। देखिए ये जो सब कुछ हम पढ़ है ना वो बहुत ही संक्षिप्त में है, उसमें कोई डिटेल नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने किससे क्या डिस्कस की, क्या बातें करते थे वो अपने ना सच्ची निजी जितने भी उनके सेवक थे उनके साथ जो वार्ताएं चल रही थी वो सब ज्ञान की पराकाष्ठा थी। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि हम शॉर्टकट में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में पढ़ रहे हैं तो अब वो यात्रा समाप्त करके दोबारा से पुरी में लौट आए। उनकी पुरी लौटने पर महाप्रभु के समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया और महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र भगवान के परम भक्त थे। वे अपनी गणना भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर बुहारना था। वो राजा था लेकिन फिर भी अपने आप को इतना तुच्छ सेवक मानता था कि मेरा काम तो केवल मंदिर में झाड़ू लगाने का है, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि जाके भगवान की विग्रह सेवा कर सकूं या कुछ। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत ही विनम्र राजा थे। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय रामानंद दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त भट्टाचार्य तथा राय रामानंद ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर। महाप्रभु ने बोला मैं राजा से मिलूंगा। वो राजा बहुत ही विनीत था लेकिन राजा था ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं मैं राजाओं से नहीं मिलता हूँ, ये बहुत ज्यादा नाकामी होते हैं और राज का लोभ होता है इनको, मैं राजाओं से नहीं मिलता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो उनका कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना घातक है। महाप्रभु आदर्श सन्यासी थे, कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने के लिए भी उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा संन्यास का नियम पालन करते थे और जो स्त्रियां थी राजा वगैरह थे इनसे ज्यादा मिलते नहीं थे। दैवी होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्यों के प्रति उनका आचरण असंदिग्ध था, यानी कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण करते कि सबके लिए मिसाल बने। आचार्य के रूप में वे आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मधु थे। उनके पार्षद छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि डालने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। यदि भी हरिदास की इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की गई, बाद में छोटे हरिदास ने महाप्रभु से साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित ठंड मिला। ये कथा तो आप सब जानते हो कि एक सन्यासी छोटे हरिदास ने जब एक माधुरी करने के लिए गए थे तो किसी पर की डाली उनकी इच्छा उत्पन्न हुई उनसे बात करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो उन्होंने उनको अपनी संगति से निकाल दिया। बाद में उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी यदि ऐसी भूल करे तो वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सन्यासियों को ये सब कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई उनको परमिशन नहीं होती है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बहुत ही कट्टर नियमों का पालन करते थे। वो चैतन्य महाप्रभु केवल ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि पता चले आगे वाले लोगों को कि कितना कठिन सन्यास के नियम होते हैं। तो फिर कभी भी उनको स्वीकार नहीं किया और अंत में जब उन्होंने आत्महत्या भी कर ली तभी भी चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा कि उसको बिल्कुल ठीक उसको दंड मिला। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांत से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। अतः यह जानते हुए भी कि राजा महान भक्त हैं, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया। अब प्रताप रुद्र की बात चल रही है कि वो जानते थे कि भक्त हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन राजा थे तो सन्यासियों का राजाओं से मिलना वर्जित है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते थे। केवल इसीलिए कि राजा धनपति था, इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक आध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक आध्यात्मिकवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधियों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ यानी नवदीक्षित के प्रति भगवान की उपेक्षा अधिक उदार होता है। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राजा को मिलना नहीं चाहते थे महाप्रभु, उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं मिलूंगा, मैं सन्यासी हूँ, अन्य लोगों के साथ और स्त्रियों के साथ मेरा कोई भी मिलने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो महाप्रभु के निजी सेवक थे, जैसे प्रताप रुद्र के पहले वहां पर काम करते थे ना सर्वभौम भट्टाचार्य, वो और ये राय रामानंद, हाँ राय रामानंद और सर्वभौम भट्टाचार्य और ये सब, उन्होंने मिलकर प्रताप रुद्र को कहा कि आप ऐसा करो, महाप्रभु जब जगन्नाथ यात्रा में आएंगे ना तो वो कीर्तन में नृत्य करते करते जब वो ना भाव आवेश में आ जाएंगे, वो लेट जाएंगे, फिर आपको उनके दर्शन करने का हम सौभाग्य प्रदान करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ, महाप्रभु लेटे हुए थे तो प्रताप बोला जाओ, मौका अच्छा है, जाओ दर्शन करके जाओ, चरण छू के आ जाओ, आशीर्वाद मिलेगा। तो वो चरणों में बैठ कर, बोले चरणों में बैठ कर तुम गोपी गीत गाना। फिर गोपी गीत गाने उनको सिखाया और फिर वहां पर प्रताप चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में बैठ के गोपी गीत गाने लगे। जयति तीर्थिकं जननामृत क्षयत इन्द्रा चतुर्दहि दयति दीक्षिता चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपी गीत के इन शब्दों को सुना, वो अचेत अवस्था में थे, लेकिन जब उनके कर्णों में यह सुंदर गीत गए तो फिर जाग के उन्होंने बोला प्रताप पुत्र को, और गाओ कितना मधुर गा रहे हो, अब कितना अच्छा मेरे कानों को लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस आते रहो और मैं सुनता रहूं। और प्रताप रुद्र और भी गाने लगे और भी इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में आ गए और प्रताप रुद्र को अपनी सीने से लगा दिया, आलंगन कर लिया और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हुई। तो यहाँ प्रश्न प्रभुपाल जी बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते ना वो भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं। हम जैसे अपराधी, हम जैसे पतितों को भगवान तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल मार्ग है कि शुद्ध भक्तों के श्री चरणों को हम कस के पकड़ लें। तो फिर शुद्ध भक्त जो है वो सदैव हमें भगवान से मिलाने का प्रयास करते रहते हैं। उसी तरह हमें श्री प्रभुपाद जी के इन वचनों को जो हम पढ़ते हैं, ये श्री प्रभुपाद से भिन्न नहीं है। श्री प्रभुपाद ने कहा मैं कभी नहीं मरूं, किसी ने कहा श्री प्रभुपाद से कि जब आप चले जाओगे तो फिर जो है ना दूसरे लोग भगवान की किस तरह जाएंगे, तो श्री चैतन्य श्री प्रभुपाद ने बोला मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा भी नहीं, मैं अपने वचनों के द्वारा सदैव जीवित रहूंगा। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो साक्षात श्री प्रभुपाद जी की वाणी, साक्षात श्री प्रभुपाद जी हैं जो हमें कृष्ण के श्री चरणों तक अवश्य ले जाएंगे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होते हैं। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहिए। देखिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए, छोटे से छोटा भी भक्त क्यों ना हो, भगवान ये नहीं देखते एज क्या है उसकी, बस भगवान अपने भक्त को देखते हैं। और यदि कोई एक भक्त दूसरे भक्त के चरणों में अपराध करता है ना तो ये भगवान कभी सहन नहीं करते। इसलिए हमें इस चीज से बहुत सावधान रहना चाहिए कि कभी किसी भक्त को हम हार्ट ना करें, किसी भक्त व्यक्ति हमारा कोई अपराध ना हो जाए, किसी भक्त की निंदा ना कर ले। हम बड़ी मुश्किल से इस मार्ग पर आए हैं, जो भगवान की भक्ति का मार्ग हमें मिला है ना उसके लिए न जाने कितने जन्मों तक हमने साधना की है। तो ये छोटी सी भूल, एक छोटी सी भूल भी यदि कोई भक्त हमारे किसी बात की वजह से नाराज होता है तो हमें विनम्र होना चाहिए, उनके चरणों में गिर जाना चाहिए, हमें क्षमा कर दो, मैं पतित हूँ। हम क्या अपराध कब होता है, जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं वो देखो कैसे रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में भक्तों, भक्त की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है विनम्रता, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो वास्तव में हम आके में कुछ कर पा भी नहीं रहे हैं, कोई भी भक्ति कोई भी साधना ढंग से नहीं कर पा रहे। तो यदि हम साथ साथ में भक्तों का अपराध भी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं कर सकेंगे। तो इस बात से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा कि भगवान के चरणों में किया गया अपराध तो हो सकता है दयालु भगवान क्षमा कर, लेकिन यदि हम किसी भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो फिर वो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भक्त वाक्य में अगर कोई ऐसी गलती करें तो भी क्या हमें उसको अवॉइड कर, हाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। हम क्यों किसी की गलतियों को देखें? बड़े गुरु महाराज बैठे हुए हैं, सीनियर डिवोटीज बैठे हुए हैं, वो खुद उनको खुद ही सुधारेंगे। हम हमें तो क्या देखना है, किसी के गुण देखने हैं, क्योंकि गुण देखेंगे तो हमारे अंदर डेवलप करेंगे। अगर अवगुण देखेंगे तो अवगुण देखते देखते हमारे अंदर वो अवगुण कब आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो भले जो जैसे भी करता है, अगर हमसे जूनियर है तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर है तो उनसे अगर हम बात कर सकते हैं तो उनसे देख के मतलब विनम्रता के साथ पूछ सकते हैं कि भाई ये कार्य जो आप कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेकिन उनको किसी तरह से हर्ट करना या फिर उनके पीछे बात या फिर रहने देना, हम बड़े सीनियर्स हैं, वो खुद देख रहे हैं, गुरु महाराज हैं, शिक्षा गुरु लोग हैं, वो खुद ही देख रहे हैं, वो खुद ही बोलेंगे उनको। हम लोगों को क्या जरूरत है किसी के बारे में बात करने की, किसी को कहने की, किसी के बारे में सोचने की? हमें भक्ति के लिए समय इतना थोड़ा होता है, पहले से हम लोगों को अध्ययन करना होता है, विग्रह सेवा करनी होती है, घर की इतनी ड्यूटीज होती है जब कम्प्लीट करना होता है, और ऊपर से हम भक्तों के बखेरों में पड़े कि ये ऐसे कर रहा है ये ऐसे कर रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते कि नहीं, भक्ति मार्ग में वास्तविक हमें अग्रसर होना है तो हमें क्या करना है, शुद्ध भक्तों की कभी भी उनकी कोई निंदा नहीं करनी है, उनका कोई उनके चरणों में कोई अपराध करने का नहीं करना है, वरना हम कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक महाप्रभु पुरी में रहे उनके अनेक हजारों भक्त भगवान की यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते। रथ यात्रा के समय गुड़ीसा मंदिर की सफाई महाप्रभु की निरीक्षण में होती थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही एक तरीका था। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकेतन प्रणाली का प्रवर्तन किया। समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठाते हैं। अब सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। क्या मांग है? कि संसार में शांति और संपर्कता का न माहौल हो, और ये तभी संभव है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि जब जगन्नाथ यात्रा होती थी तो बहुत संकीर्तन वो करते थे, इतना अद्भुत संकीर्तन होता था। इससे क्या होता था कि जितनी भी जनता है उनके मन जो है आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मुड़ते, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन यही था कि हृदय को पवित्र करना, और उसका एक ही तरीका है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो लोगों को जब ये प्राप्त होता था तो उनके मन पवित्र होते थे और इससे संसार में शांति उत्पन्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। वे झारखंड यानी मध्य प्रदेश के जंगल से होकर आगे बढ़े तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सारे जंगली शेर, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बाद में अपने उत्तर पहले दक्षिण यात्रा की थी ना, फिर उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए गए, जहाँ पर वृंदावन और त्री जगहों की यात्रा की और वो गुजर रहे थे झारखंड के जंगल से। वहां पर पशु जितने भी थे, बड़े इतने खूंखार पशु भी हैं, वो जितने महाप्रभु के संकीर्तन को सुनकर उसने संकीर्तन में शांति से मैत्री से प्रेम से डांस करते थे, नृत्य करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे साक्षात, और जब वो भगवान भगवान का नाम इतने प्रेम से लेते थे तो चाहे कोई कैसे भी गुण उसके अंदर हो, कितना ही जानवर वृत्ति का क्यों ना हो, वो फिर भी भगवान के साथ प्रेम उनका उदय हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम जो है वो जीव मात्र का स्वभाव है। बस उसे प्रकट करने वाला कोई शुद्ध जीव आ जाए तो उनमें भी है ना प्रकट हो जाता था। मनुष्यों के विषय में तो क्या कहना, अब जानवर भी जब कृष्ण प्रेम में नृत्य करना शुरू कर देते तो मनुष्यों का क्या कहना, क्योंकि वे सब भी है। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा, न महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति नस्ल रंग या लिंग तक सीमित है। यह उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इन महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्था में आप संकीर्तन आंदोलन से आपको अलग नहीं किया जा सकता। अब चाहे कोई भी हो, आप संकीर्तन आंदोलन में प्रवेश कर सकते हो, उसमें भाग ले सकते हो, क्योंकि मनुष्य तो फिर भी सभ्य है, क्योंकि प्रभु ने तो जानवरों पर भी इतनी कृपा की कि वो भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन कर सके। वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए, जहाँ वे रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुंचे, वे दो मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते रहे। सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने में लंबी कहानी है, अतः उसका पूर्ण वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है। इसकी मुख्य बातें नीचे दी गई। अब वृंदावन से लौटते हुए जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए थे तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी से उनकी भेंट हुई थी, और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी, दो महीने तक सनातन गोस्वामी को दिव्य ज्ञान की शिक्षा दी थी, बहुत बहुत लंबी कहानी श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पर पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुख्य बातें यहाँ नीचे दी जा रही हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और यूं ही चैतन्य महाप्रभु की इन अद्भुत लीलाओं का आस्वादन करते करते हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना हर्षित होती हूँ कि ये सब सुनकर चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़कर और ये बात को महसूस करके कि अब हम श्रीमद् भागवतम के और निकट जा रहे हैं, और कुछ दिन में एक दो दिन में हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम 1.1.1 पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।